पेज नंबर 8, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। भारतेंदु के ये दोनों नाटक एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। दोनों में ही भारत दुर्दशा का रोना है, दोनों में ही विदेशी राज्य के शोषण का अंकन है, दोनों में ही व्यंग्य के माध्यम से विदेशी राजकाज शिक्षा के खोखलेपन का भंडाफोड़ है। भारत दुर्दशा में आशावादी नाटककार कृष्ण कल की अवतार की प्रार्थना मंगलाचरण में करता है। वह मानता है कि वह दिन दूर नहीं जब भारत में नीति धर्म की स्थापना के लिए भगवान मानव रूप में अवतरित होंगे। अंधेर नगरी के अंत में राजा की टिकटी खड़ी की जाती है। भारत की दुर्दशा में नव प्रभात की आशा है। भारत की मूढ़ता कलह अविद्या में भारत को मूढ़ता कलह अविद्या में लिप्त दिखाया गया है। लरी वैदिक जैन दुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सेन पुनि भारी, तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भारत का अंधकार युग यवनों के आक्रमण काल से आरंभ होता है। अंग्रेज यवन से अच्छा है, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। भारतेंदु अंग्रेजी राज सुख साज सजे जवन राज की तुलना में कहते हैं। अंधेर नगरी में भारत की विपन्नावस्था का जो अंकन है, वह भारत दुर्दशा में भारत दुर्देव द्वारा इस प्रकार कहा गया है। फूट बैर औ कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घन घोर, काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर और हाथ, दू इनको संतोष खुशामत कायरता भी साथ, मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो, मुझे एक राक्षस मानी जी। मेरे मित्र डॉक्टर नित्यानंद तिवारी की उक्त कविता पर टिप्पणी है। इस कविता में जीवन की वास्तविक सामग्री नई कलात्मक गति और योग्यता का निर्माण करती है। कवि का आशय व्यंग्य के भीतर प्रतिफलित होता है, जो तत्कालीन भारतीय समाज के विशेष ऐतिहासिक प्रसंग से पैदा होता है, जहाँ जीवन करुण त्रासदी और हास्यास्पद स्वांग की भीषण विषमता का शिकार है। क्या कहा जा सकता है कि व्यंग्य नाटकीयता तनाव, जिन्हें नई कलात्मक क्षमता के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, उन्हें भारतेंदु ने अपने युग की वास्तविक जीवन सामग्री से अर्जित कर लिया था? निश्चय ही भारतेंदु तनाव लोभ संघर्ष को सफलतापूर्वक अंकित कर सके हैं। अंधेर नगरी भारत दुर्दशा की सफलता किसी आंगिरस कथानक वैशिष्ट अथवा सफल चरित्र चित्रण से नहीं, बल्कि जीवन के तनाव से विकसित कवि की भावनात्मक अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति में है। मेरा मत है कि भारतेंदु आधुनिक उच्चतम नाटककारों की श्रेणी में हैं। वे इतिहास चक्र को समझने और उसे नई दिशा देने में समर्थ हैं। भारतेंदु के इन नाटकों में उस प्रतिक्रिया को स्पष्ट देखा जा सकता है जो भारत के शुभचिंतकों के मानस में उमड़ घुमड़ रही थी। भारतेंदु भारत की स्वतंत्रता के अग्रदूत हैं। उनकी मृत्यु के बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संघर्ष को प्रगति मिली। विदेश को धन न जाए इत्यर्थ स्वदेशी आंदोलन गांधी जी द्वारा छेड़ा गया। इस प्रकार भारतेंदु राष्ट्र नेता राष्ट्र कवि के रूप में अप्रतिम हैं। अंधेर नगरी भारत दुर्दशा से जो हमारी दुर्दशा मूर्खता अंधविश्वास फूट कलह चापलूसी तथा अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी छुआछूत मद्यपान अन्याय का अंकन है, वह स्वतंत्रता के बाद भी बनी है। आज भी जयचंद्र हैं जो विदेशी ताकतों से मिलकर विश्वासघात कर रहे हैं। अतः अंधेर नगरी आज भी सार्थक, यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिससे हम नसीहत ले सकते हैं। भारतेंदु के आंदोलन का उदारवादी अंग्रेजों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र नव भारत के निर्माता। व्यक्तित्व। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी के एक संपन्न सेठ परिवार में हुआ था। इनका देहावसान क्षय की बीमारी से 6 जनवरी 1885 को अल्पायु में ही हो गया था। इनके निधन पर कवि वचन सुधा 12 जनवरी 1885 में श्री रमाशंकर व्यास ने बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र शीर्षक निबंध प्रकाशित किया। इसका कुछ अंश इस प्रकार है। श्रीमान कवि चूड़ामणि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सन 1850 ईस्वी सितंबर मास की 9वीं तारीख को जन्म ग्रहण किया था। उनको माता पिता का सुख बहुत कम देखने में आया। उनकी शिक्षा बालकपन से दी गई। संस्कृत, फारसी, बांग्ला, महाराष्ट्री इत्यादि अनेक भाषाओं में बाबू साहिब ने घर पर निज परिश्रम किया था। इस समय बाबू साहिब तेलंग और तमिल भाषा को छोड़कर भारत की सब देश भाषाओं के पंडित थे। बाबू साहब को अपने देश कल्याण का सदा ध्यान रहा करता था। उन्होंने गोवध उठा देने के लिए दिल्ली दरबार के समय 60,000 हस्ताक्षर कराकर लॉर्ड लिटन के पास भेजा था। हिंदी के लिए सदा जोर देते गए। आपने एजुकेशन कमीशन की साक्षी में यहाँ तक जोर दिया कि घृणा फड़क उठते थे। अपने लेख तथा काव्य से लोगों को उन्नति के अखाड़े में आने के लिए सदा सत्यवान रहे। वह मोहिनी मूर्ति भुलाए से नहीं भूलती, पर करें क्या। बाबू साहब की अवस्था कुल 34 वर्ष 3 महीने 27 दिन 17 घंटे 7 मिनट और 48 सेकंड थी, पर निर्दयी काल के कुछ वश नहीं। भारतेंदु की प्रतिभा का शायद ही कोई साहित्यकार हुआ हो। तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक सीमाओं में रहकर भी देश प्रेम, भाषा प्रेम, स्वदेश प्रेम, शिक्षा प्रेम तथा साहित्य प्रेम से वे सराबोर थे। लगता है उन्होंने जब से होश संभाला हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा में ही सोते जागते सारा समय लगाया। शरीर, धन, शक्ति सभी को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर दिया। जितने बड़े वे वैष्णव भक्त थे, उतने ही बड़े समाज सेवी भी सच्चे वैष्णव थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। इनके पिता गोपाल चंद्र वैष्णव थे और गिरधर दास उपनाम से कविता करते थे। भारतेंदु जब 5 वर्ष के थे तभी माँ चल बसी और 9 वर्ष की अवस्था में पिता से बिच्छू हो गया। तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक स्थिति। मेरे सहपाठी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, जिस समय अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ उस समय हिंदू धर्म शिथिल हो चुका था। जिस धर्म के तत्व ज्ञान के आगे संसार सिर झुकाता था, ब्राह्मण उसी को भूल कर दान लेने में ही अपने कर्तव्य की तीसरी समझ बैठे। लेकिन अज्ञान और अंध परंपरा से संवेष्टित अशिक्षित भारतीय जनता अब भी उनके आगे माथा टेक रही थी। यह जाति की दुर्बलता और प्राण शून्यता का प्रतीक था। देश काल के अनुसार सामाजिक और धार्मिक जातियों और उपजातियों के भेद के कारण भारतवासियों के संगठित होने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। इसके साथ ही विधवा विवाह, बहु विवाह, खान पान संबंधी प्रतिबंध, समुद्र यात्रा के कारण जाति बहिष्कार, नशाखोरी, पर्दा, स्त्रियों की हीनावस्था, धार्मिक सांप्रदायिकता, अफीम खाना आदि कुप्रथाओं का चलन हो गया था। नव जागरण। अंग्रेजी राज्य हमारी दासता का प्रतीक था, हमारी अकर्मण्यता का फल था, यह परिणाम था हमारी अज्ञानता, अशिक्षा और फूट का। संसार को ईश्वर मानकर उसकी हमने उपेक्षा की। समाज में रहकर भी सामाजिक उत्थान से मुंह मोड़ लिया। बुद्धि के विकास की अवहेलना की, न व्यक्तित्व के निर्माण की चेष्टा की और न समाज को सुखी बनाने के लिए हाथ पैर हिलाया। अंग्रेजों के आने से हम चेते, जागे और उठे। एक ठेस लगी। अपनी भूली हुई संस्कृति के प्रति प्रेम उमड़ा। अपने साहित्य के अध्ययन के प्रति जागरूक हुए। अपनी भाषाओं के प्रति ममता उत्पन्न हुई। स्वतंत्र देश के निवासियों के संपर्क में आने से स्वाभिमान उत्पन्न हुआ। विदेशी साहित्य के पठन पाठन से हम संसार की गतिविधि से परिचित हुए। इसका फल हुआ कि नवोत्थान की दिशा में हम आगे बढ़े। राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में कलकत्ते में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में इन्होंने बंगदूत निकाला। स्वामी दयानंद 1824 से 1883 ने आर्य समाज 1875 की स्थापना कर आर्य धर्म, आर्य भाषा तथा आर्य साहित्य की प्रतिष्ठा की। समाज को सभी दुर्बलताओं, कुरीतियों के उन्मूलन का लक्ष्य आर्य समाज ने बनाया। तीर्थ स्थानों, मठों और मंदिरों में फैले हुए अनाचार को रोकने के लिए इन्होंने मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया तथा बाल विवाह, वृद्ध विवाह, मद्यपान, जुआ, वेश्या, नृत्य आदि समाज की विनाशकारी प्रवृत्तियों को रोका। 1826 में कलकत्ते से उदंत मार्तंड नामक हिंदी पत्र निकला। भाषा प्रचार की दृष्टि से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1844 में बनारस अखबार निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ने शकुंतला, मेघदूत आदि का अनुवाद किया। प्रेस, डाक, सड़क आदि की सुविधा से जनता का आपसी संपर्क बढ़ा। शहर और गांव का भेद कम होने लगा। सबसे बड़ी जागृति थी भारतीयता की भावना का उत्पन्न होना। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक चेतना की लहर व्याप्त हुई। अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य। अंग्रेज धीरे धीरे अपना शासन सुदृढ़ कर रहे थे और हमें सदा गुलाम बनाए रखने की तैयारी में थे। 1853 में पार्लियामेंट के सामने सर चार्ल्स ट्रेविलियन की स्वीकारोक्ति इसका प्रमाण है। हम लोग पैकेट में अंग्रेज जो कुछ कर रहे हैं, इसका उद्देश्य इस प्राचीन हिंदू संस्था के उन नायकों के साथ अनुचित उत्तेजनापूर्ण संघर्ष में प्रवेश करना नहीं, वरन इस देश के निवासियों को एक अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर का द्वार उद्घाटित करने वाली बिल्कुल नई कुंजी देना है। इस नई प्रणाली के बीजारोपण का प्रथम प्रायोजन भारतवासियों के मस्तिष्क से उनकी प्राचीन प्रणाली के प्रभाव को पूर्णतः उन्मूलन उनकी प्राचीन प्रणाली के प्रभाव का पूर्णतः उन्मूलन करना है। अधिकतर वे इस प्रणाली से परिचित भी नहीं होते। यह एक महान सत्य है कि किसी देश की उदीयमान संतान ही वर्षों में संपूर्ण राष्ट्र बन जाती है, और यदि हम जनता के चरित्र में कोई प्रभावशाली परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि उन्हें बचपन से ही ऐसी शिक्षा दें कि वे आगे चलकर हमारी इच्छा अनुसार चलें। तब हमारा समस्त धन व्यय सार्थक हो जाएगा। हमें अपने मार्ग में परंपरागत रूढ़ियों से संघर्ष ना करना होगा। इस शिक्षा से हमें कुछ ऐसे मस्तिष्क वाले मनुष्य मिल सकेंगे जिनसे हम अपना काम निकाल सकेंगे, और हम प्रभावशाली और बुद्धिमान युवकों के एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर सकेंगे जो आगे चलकर हमारी सहायता के बिना ही हमारी प्रणाली के सक्रिय प्रचारक बनेंगे। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत में आधुनिक सुधार किए गए। ईसाई पादरियों को धर्म प्रचार की पूरी छूट दी गई। अंग्रेजियत, ईसाईयत के विरोध में हुआ हमारा 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम। इसमें हम सफल नहीं हुए, पर हमने समझ लिया कि स्वतंत्र होने के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अस्तु, प्रत्यक्ष ढंग से अंग्रेजों की प्रशंसा स्तुति करते हुए भी हम उनके शोषण से मुक्त होने के लिए बेचैन हो रहे थे। हमारी दशा थी बांध के मारे कस न सहे।